الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. دیکھو ازدواجی زندگی کے بارے میں بات چل رہی تھی، اس کا دو مجلسیں گئیں. اچھی بیوی کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور اس کے اندر چار نشانیاں تھیں، اور جس کو پانچ چیزیں مل گئی تو اس کو دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس کو مل گئی. خوش قسمت ہے جس کو پانچ چیزیں مل جائے، وہ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھے. شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، اور وطن کی روزی اور نیک بیوی. یہ جو پانچ چیزیں ہیں نا، اس کو تو ہر مرد اور ہر عورت اس کو یاد کر لے، اور اس کو تو خوب بولے کہ جس کو پانچ چیز دنیا کی مل گئی اس کو دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی، اور خوش قسمت انسان جس کو یہ پانچ چیزیں مل جائے. تو خوب رٹے تو ہمارے اندر اترے گا. ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت اٹھانے والا بدن، وطن کی روزی اور نیک بیوی. تو یہ چیزیں تھیں. تو اب اچھی بیوی کے صفات، اچھی بیوی کیسی ہوتی ہے؟ اہل اللہ نے لکھا ہے، اللہ والوں نے، کہ بیوی میں چار صفات ضروری ہونی چاہیے. بیوی میں چار صفات ضرور ہونی چاہیے. پہلی صفت، اس کے چہرے پر حیا ہو، حیا. اس کا دل بھی حیا سے لبریز ہو، بھرا ہوا ہو. یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے. تو دیکھو، ہمیشہ عورتوں کے اندر حیا جو ہے وہ ان کی زینت ہے، خوبصورتی ہے. حیا نہ ہو تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگا اس کے دل بھی حیا سے لبریز ہوگا. مثل مشہور ہے، انسان کے دل کے آئینہ ہوتا ہے چہرہ، انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورت میں بہترین ہے. جی، حیا مردوں میں بھی بہتر ہے لیکن عورت کے لیے تو بہترین ہے. دوسری صفت فرمائی، جس کی زبان میں شیرینی ہو. اچھی بیوی کی صفات میں سے ایک وہ ہے جو حیا ہو، اور دوسرا اس کی زبان میٹھی. یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گولے، بولے تو کانوں میں رس گولے، یعنی کانوں کو سننے کو بہت اچھا لگے، ایسے پیار کی اور نرم کی بات. یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو جلی کٹی سناتی رہے، یا بچوں کو بات بات پر جھڑکتی رہے، یہ نہ ہو. اور تیسری صفت یہ کہ اس کے دل میں نیکی ہو. تیسری صفت کیا ہے؟ اس کے دل میں نیکی ہو. پہلی صفت حیا ہو، دوسرا بات میں مٹھاس ہو، تیسرا اس کے دل میں نیکی ہو، اور چوتھی صفت یہ کہ اس کے ہاتھ کام کاج میں مصروف رہے. یہ خوبیاں جس عورت میں ہو یقیناً وہ بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے. اچھا، یہ تو بیوی کے صفات. اچھا، اب خاوند کے بھی صفات ہیں. یہ صفات اگر خاوند میں ہو تو خاوند اچھا ہے، وہ شوہر اچھا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر اپنی بیٹی کے لیے کوئی آدمی رشتہ ڈھونڈے تو اس کے لیے دو مثالیں کافی ہے جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ملتی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا، اپنی بیٹی کے لیے کیسے داماد کو پسند کیا. ایک مثال حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو رشتے میں قریبی تھے. جی جرأت اور شجاعت میں ان کا ثانی نظر نہیں آتا, ان کے اندر بہادری تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ نے ان کو شیر کا دل عطا کیا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر کا دل عطا کیا تھا, مشقت اٹھانے والا بدن تھا, ذمہ داریاں نبھانے والے انسان تھے. سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ نے علم اتنا عطا کیا کہ علوم کے بحر ناپیدا کنار تھے, یعنی اتنا علوم تھا کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں تھا, اتنا علوم تھا. تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اس سے بہتر مثال اور کوئی نہیں مل سکتی, حضرت علی رضی اللہ عنہ. دوسری مثال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے. اچھا کاروبار تھا, معاشرے میں عزت کا مقام تھا, اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے معاشرے کے معزز انسان سمجھے جاتے تھے, طبیعت میں نرمی تھی, اس قدر با حیا تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہو تو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے مثالیں پیش کر دی, اس سے بہتر مثالیں ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں مل سکتی. داماد لانا ہو تو ایسا حضرت علی کرم اللہ جیسا, یا تو بہادر اور علم والا ہو یا حیا والا ہو. بہترین خاوند کون ہے؟ خیرکم لاہلی, حدیث پاک میں آتا ہے خیرکم لاہلی, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. فرمایا انا خیرکم لاہلی, میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں. تم میں سب سے بہتر ہوں. تو بہترین خاوند کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, سب سے بہتر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو مثال بنا کر پیش کیا. کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو, تو اس کے دوستوں سے پوچھو, نہ پوچھے, کاروبار نہ دیکھے. کسی بندے کی اچھائی کا اندازہ لگانا ہو اس کے دوستوں سے نہ پوچھے, کاروبار نہ دیکھے. پوچھنا ہو تو اس کی بیوی سے ذرا پوچھے کہ یہ کیسا انسان ہے. بیوی سے پوچھے, اگر بیوی کہے کہ اس کے معاشرت اچھی ہے تو وہ اچھا انسان. فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے. یعنی مومن اخلاق کے بغیر اچھا ہو ہی نہیں سکتا. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور کہا میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا. کے پاس ایک عورت آئی, فرمایا میرا خاوند بات بات پر غصہ کرتا. حتیٰ کہ مارتا بھی ہے. یہ بات دونوں کان کھول کر سننے والی ہے, باقی باتیں تو چلو ایک کان سے سن لینا, مگر مردوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذرا دونوں کانیں کھول کر سن لیں. ارے بھائی ایک کان نہیں دو کان کھول کر سن. ہاں تو فرمایا یہ بات دونوں کان کھول کر سننا. بیوی نے آ کر نبی علیہ السلام کی محفل میں کہا کہ اللہ کے نبی میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے. بھائی آ جاؤ, میرا خاوند مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر جھڑکتا ہے حتیٰ کہ مجھے مارتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ تمہارا چہرہ سیاہ ہو, تم اپنی بیوی کو باندی کی طرح مارتے ہو. फिर उसके साथ तुम बोसो किनार करते हो, क्या तुम इस बात पर हया नहीं आती? मारते भी हो फिर प्यार भी करते हो तो हया नहीं आती? यानी एक वक्त में तुम उसे इतना करीब कर रहे हो और दूसरे वक्त में तुम उसे बांदी की तरह मार रहे हो। बांदी यानी लौंडी, काम वाली। ये अल्फाज हमें पैगाम दे रहे हैं कि बीवी घर की नौकरानी नहीं बल्कि शरीके हयात है, जिंदगी की साथी है। हाँ, अगर वो कोई कबीरा गुना कर बैठे और समझाने से भी न समझे तो अब शरीयत ने महदूद मारने की इजाजत दी है ताकि उसे नसीहत हो सके। मिसाल मशहूर है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दो बातें बड़ी आम है, एक ये कि औरत की जबान काबू में नहीं रहती, औरत की जबान काबू में नहीं रहती, और दूसरा ये कि मर्द के हाथ काबू में नहीं रहते। जी, औरत की जबान काबू में नहीं रहती और मर्द के हाथ काबू में नहीं रहते। सुनिए, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से बनाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो मिट्टी से बनाया, लेकिन जब अम्मा हवा को पैदा किया तो रिवायत में आता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनको निकाला। पसली समझते, पसली, पसली से निकाला। उसमें भी एक मैसेज है, क्या है? ये मियां बीवी के दरमियान ऐसा ताल्लुक है कि हमने औरत को तुम्हारी पसली से निकाला, पांव से इसलिए नहीं बनाया कि तुम उसको पांव की जूती ना समझ लेना, पांव से इसलिए नहीं बनाया कि तुम उसको पांव की जूती न समझ लेना, सर से इसलिए नहीं बनाया कि तुम उसको सर के ऊपर नहीं बिठा लेना। हमने उसे पसली से बनाया है और यही तुम्हारे दिल के सबसे ज्यादा करीब है, लिहाजा ए खाविन तुम अपनी बीवी को दिल के करीब रखना, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। उसको दिल के करीब रखना तो जिंदगी अच्छी गुजर। शादी का बुनियादी मकसद यह है, शादी का बुनियादी मकसद यह है कि मियां बीवी के जरिए गुनाहों से बच जाए। शादी का मकसद क्या है? गुनाहों से बच जाए, और बीवी अपने मियां के जरिए गुनाहों से बचे, इसलिए उन दोनों को जिंदगी का साथी कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे के जरिए से गुनाहों से बचना होता है, और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी वाली जिंदगी गुजारने में एक दूसरे का मुआविन बनना होता है। इनका ताल्लुक एक दूसरे के साथ इतना मजबूत है, पुराने मजीद में इनके ताल्लुक के बारे में ऐसी मिसाल दी कि दुनिया का कोई मजहब ऐसी मिसाल न दे सका। ऐसी पुराने मजीद में मिसाल दी, हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और तुम अपनी बीवियों का लिबास हो, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास और तुम उनका लिबास। अच्छा, ये लिबास है ना, इसको लिबास कहते हैं। लिबास क्या करता है, आगे सुनो। लिबास के दो फायदे, लिबास यानी ड्रेस, लिबास के दो फायदे। एक तो उससे इंसान के बदन के ऐब छुप जाते हैं, ऊपर अच्छा कपड़ा पहन लो तो ऐब पूरा छुप जाता है, तो उससे इंसान के बदन के ऐब छुप जाते हैं। और अगर बेलिबास मर्द को कहे कि लोगों में चला जाए कि जाओ, तो शर्म के मारे उसको पसीना आ जाए। लिबास न हो तो कहो कि सबके सामने आ जाओ तो उसको शर्म आएगी, और अगर कोई उसे लोगों के सामने जबरदस्ती बेलिबास कर दे तो जी चाहेगा कि जमीन फटे और मैं अंदर उतर जाऊं। ठीक है ना? तो लिबास के जरिए इंसान क्या करता है, अपने जिस्म के आजा को दूसरों से छुपाता है। लिबास क्या करता है, जिस्म के आजा को दूसरों से छुपाता है। ये कुदरती शर्म हया का तकाजा है। जी, नेट में होता है ऐसा। तो फरमाया शर्म हया का तकाजा है। तो लिबास का एक फायदा कि ये इंसान के ऐबों को छुपाता है, और दूसरा फायदा है कि इंसान को जीनत बख्शता है, खूबसूरत भी बनाता है, लिबास ऐबों को भी छुपाता है और ऊपर से खूबसूरत भी बनाता है। अच्छा लिबास पहनो तो खूबसूरत भी लगेगा और साथ साथ में उसका ऐब अंदर का छुप गया। जिस्म तो चादर से भी छुप जाता है, चादर डालो तो भी जिस्म छुप जाता है, मगर हम उमूमन अच्छा लिबास पहनते हैं सुन्नत तरीके से, सर पे अमामा हो, जुब्बा हो, नीचे पाजामा हो, शलवार हो, तो इस तरह पहनकर जब हम चलते हैं तो लोग शख्सियत को देखकर मुतासिर होते हैं। मालूम हुआ कि कपड़ों ने इंसान की शख्सियत को जेबाइश बख्शी, खूबसूरती। ये लिबास का दूसरा फायदा। तो लिबास के कितने फायदे हुए भाई? दो फायदे, एक ऐबों को छुपाता है और दूसरा खूबसूरती को लाता है। मियां बीवी के ताल्लुक, क्योंकि मियां बीवी के लिए लिबास है और बीवी मियां के लिए लिबास है, तो फिर अब ये लिबास बना तो इनके दो फायदे। मियां बीवी के ताल्लुक के ये दो फायदे बड़े अहम है। क्या है कि अगर बीवी न हो, खाविन अपने ख्वाहिश के तकाजों के पीछे मालूम नहीं कहां कहां मुंह मारता फिर और लोगों के सामने जिल्लत और रुसवाई उठाता फिर। ख्वाहिश है जो तकाजा रखा है, अगर बीवी नहीं होगी तो फिर ये रुसवाई उठाता फिरेगा। यूं मियां बीवी की जिंदगी वजह से उसकी शख्सियत के ऐब छुप जाएंगे और बीवी होगी तो उसका वो ऐब छुप जाएगा, छुपेगा नहीं छुपेगा। ये फायदा हुआ, इसलिए लिबास है, और बीवी का शोहर की वजह से छुप जाएगा, तो ये छुप जाना, ऐब छुप गया। और दूसरी बात ये कि अगर मर्द को अकेला घर में रहना पड़े तो घर के अंदर भी बेतरबियती होगी और उसकी जिंदगी का कोई काम ढंग का नहीं होगा, न उसका लिबास साफ सुथरा होगा, न उसके घर में खाने पकाने का नज़म ठीक होगा, लिहाजा उसकी जिंदगी के अंदर जमाल नहीं होगा। इंसान अकेला जिंदगी गुजारेगा तो खूबसूरती नहीं होगी, घर में ऐसा इधर उधर पड़ा हुआ होगा, खाने का ठिकाना नहीं, क्योंकि अकेला है। और अगर बीवी होगी तो घर की सफाई होगी, चीज ठिकाने पर होगी, कपड़े तैयार होंगे तो खूबसूरत लगता है, नहीं? दूसरा फायदा कि बीवी की वजह से मर्द खूबसूरत, और उसके ऐब छुप गए जो गुनाहों का ऐब था, तो छुप जाए। ऐसे बीवी के लिए भी, वो अकेली होगी तो उसके लिए भी कोई खूबसूरती नहीं, अगर उसका शौहर है तो वो भी खूबसूरत लगती है, इज्जत वाली जिंदगी गिनी जाती है। तो हर वक्त मलाल रहेगा, बीवी के आने से इंसान की जिंदगी को जीनत नसीब हो जाती है, खूबसूरती मिल जाती है। एक तीसरी चीज है लिबास के अंदर, वो ये कि लिबास इंसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब होता है। भाई इंसान के जिस्म से ज्यादा करीब तुम हो या लिबास है मेरा? लिबास है ना, ये सबसे ज्यादा करीब होता है। वो ये कि लिबास इंसान के जिस्म के सबसे ज्यादा करीब होता है, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं जो लिबास से ज्यादा इंसान के जिस्म के करीब हो। तो कुरान मजीद में जो लिबास की मिसाल दी, उससे बताना ये मकसद था कि मियां बीवी को पैगाम मिल जाए कि खाविन तेरे लिए अब जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब तरीन तुम्हारी बीवी है। इंसान के सबसे ज्यादा करीब कौन है भाई? उसकी बीवी। और बीवी के लिए सबसे ज्यादा करीब शोहर है, और बीवी को पैगाम दिया गया कि तेरे लिए अब जिंदगी में करीब तरीन हस्ती तुम्हारा खाविंद है, तो तुम दोनों एक दूसरे के लिबास की तरह एक दूसरे के जिस्म के करीब हो, जिस्म के करीब हो। जब कोई चीज इतनी करीब होती है तो साफ जाहिर है कि उससे इंसान को मोहब्बत होती, ताल्लुक होता है। तो कुरान मजीद में मियां बीवी के ताल्लुक को इतने खूबसूरत लफ्ज के साथ तशरीह दी, देखकर वाजे कर, तो हुन्न लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास। समझ में आ गई बात अच्छी तरीके से मिसाल से। इस दिवाजी जिंदगी के बारे में एक बात जहन में रखिए, इस दिवाजी जिंदगी समझ गए, मेरे शादीशुदा जिंदगी, इस दिवाजी जिंदगी के बारे में एक बात जहन में रखिए कि जहां मोहब्बत, जहां मोहब्बत पतली हुआ करती है, जहां मोहब्बत पतली हुआ करती है वहां ऐब मोटे नजर आते हैं। भाई आज ऐब देखते हैं ना, बीवी शोहर का ऐब देखते हैं, शोहर बीवी का ऐब देखते हैं, तो कब मोहब्बत पतली होगी तो ऐब मोटे होंगे, और छोटी छोटी बातों के पतंगड़ बन जाया करते हैं। तो इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि तुम आपस में मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारो। इंसान को बड़ा हौसला रखना चाहिए। एक बड़ा निजाम चलाने के लिए इंसान को दिल भी बड़ा रखना चाहिए। अब मियां बीवी का एक निजाम है, और वो एक दिन दो दिन का नहीं है, मौत तक का एक निजाम है। अब उसको निभाने के लिए दिल भी तो बड़ा रखना चाहिए। अब तुम दिल छोटा सा लेके बैठे हो और जिंदगी निभानी है तो बात बातों में लड़ाई होगी। इसलिए घरों में लड़ाई न करे, और लड़ाई होती है वो दिल छोटे होने की वजह से। तो फरमाया निजाम मर्द को संभालना होता है तो अपने दिलों को बड़ा रखे। इंसान को तहम्मुल और बुर्दबारी से घर के मामला निभाने चाहिए। तहम्मुल और बुर्दबारी से। इतनी अजीब बात है कि खाविंद अपनी बीवी से झगड़ता है, जो जिंदगी खाविंद के लिए वक्फ कर चुकी होती। खाविंद अपनी बीवी के लिए बीवी से झगड़ता है, और जो जिंदगी खाविंद के लिए, वो बीवी ने तो अपनी पूरी जिंदगी को अब खाविंद के लिए वक्फ कर चुकी होती है, और बीवी अपने खाविंद से झगड़ती है जो उसकी जिंदगी में इतना बड़ा मकाम पा चुका होता है। अब क्यों झगड़ता? शनि दम के मर्दा ने राहे खुदा, दिल दुश्मना ने हम न करंद तंग। तेरा तुरा के मयसर शवद ई मकाम के बादोसता हस्त पेकार जंग। हमने सुना अल्लाह वाले दुश्मनों के दिलों को भी तंग नहीं किया करते। हमने सुना कि अल्लाह वाले जो होते हैं वो दुश्मनों के दिल को भी तंग नहीं करते। तुम्हें ये मकाम कहां से नसीब हुआ कि तुम अपनों के साथ बरसरे पैकार रहो? तो फिर बीवी तो तुम्हारी अपनी है, वो दुश्मनों के साथ भी उसको तंग नहीं करते, तो बीवी को क्यों तंग करते? बाज औकात दीनी जहालत की वजह से या तकब्बुर की वजह से पढ़े लिखे जोड़ों में भी लड़ाई होती रहती है। मियां बीवी एक दूसरे के इस कदर खिलाफ कि खाविन हर वक्त बीवी की गलतियां और ऐब ढूंढने की कोशिश करता है, और बीवी हर वक्त खाविन की गलतियां और ऐब ढूंढने की कोशिश करती है। जिस्म एक दूसरे के कितने करीब, दिल एक दूसरे से कितने दूर है? जिस्म तो दोनों करीब में है, एक घर में है, और दिल देखो तो पता नहीं कहां कहां है। तो दिल एक दूसरे के, तो फरमाया मियां बीवी एक दूसरे के इस कदर खिलाफ, तो बीवी हर वक्त खाविन की गलतियां और ऐब ढूंढने की कोशिश करती। जिस्म एक दूसरे के कितने करीब, दिल एक दूसरे से कितने दूर, इन दोनों का मामला इस शेर का मिसदाक है। जिंदगी बीत रही है दानिश, कोई बेजुर्म सजा हो जैसे। यानी होना कोई किया नहीं और सजा मिल रही है। यानी जब शादी हो जाती है, अब बेचारा बीवी से तंग आ जाता है तो क्या कहता है कि जिंदगी तो गुजर रही है लेकिन बगैर जुर्म के सजा मिल रही है। कोई गलती तो की नहीं और मुझे सजा मिल रही है। आप लोग नाराज तो नहीं हो रहे? बोले क्या बीवी का बात लग रहा है, कोई दूसरी बात करो मौलाना। एक तो वैसे भी उससे भाग कर तो आए एहतिकाम में, तो फिर भी उसी की बातें करते हो। ऐसा तो नहीं हो रहा? हाँ तो ठीक है। बाद औकात झगड़े किसी तीसरे की वजह से होते हैं। बाद औकात ये झगड़े, मियां बीवी जो झगड़े होते हैं ना, वो तीसरा कोई होता है जो झगड़ा करा रहा होता है, किसी तीसरे की वजह से। ये मेरी बात याद रखना कि मियां बीवी एक दूसरे की वजह से नहीं झगड़ते। जब भी झगड़ेंगे किसी तीसरे की वजह से झगड़ेंगे, और वो तीसरा कौन होगा? या तो वो सास ससुर होंगे या बीवी के मेके वाले होंगे। सास ससुर की वजह से झगड़े, अब सास ने कुछ तो कुछ सुनाया और वहां से शुरू हो जाता है, या फिर उसके मेके वाले कुछ ना कुछ, उसकी बहने हो या उसके कोई रिश्तेदार हो। तो इसलिए शरीयत ने एक बात समझा दी, लड़की को कहा कि देखो निकाह से पहले एक माँ थी, निकाह से पहले यानी उसकी माँ है ना, एक माँ थी, अब तुम्हारी दो माएं हैं और दो बाप हैं। इसी तरह लड़के को बता दिया कि तुम्हारी दो माएं और दो बाप हैं। तो अल्लाह ताला ने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा दिया, सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा दिया। तो उसमें एक बेहतरीन उसूल याद रख लीजिए कि शादी के बाद लड़की को चाहिए कि खाविन के घर वालों को खुश रखे, और खाविन को चाहिए कि अपनी बीवी के घर वालों को खुश रखे। जहां ये उसूल दोनों मियां बीवी अपना ले, वहां आप देखेंगे कभी लड़ाई नहीं होगी। आज शोहर बीवी के माँ बाप को अपना नहीं समझता, इसलिए वो उसको ताना देंगे, तेरे माँ बाप कह रहे कि तेरे नहीं है, तेरे भी तो है, तो वह तू अपने माँ बाप को कुछ न कुछ बोल रहा होता। वो समझते नहीं, मेरे माँ बाप नहीं, वो भी हमारे माँ बाप है। अब जैसे मेरे हकीकी माँ बाप है, वैसी ही इज्जत इनके माँ बाप की भी हमें करनी, तो फिर मोहब्बत होगी। तो वो अपनी बीवी के घर वालों को खुश रखे। जहां ये उसूल दोनों मियां भी अपना ले, वहां आप देखेंगे कभी लड़ाई नहीं होगी। कभी एक गुस्से में आ जाए तो दूसरे को चाहिए कि तहम्मुली मिजाज से, तो दूसरे को चाहिए कि बर्दाश्त वाले मिजाज से काम ले। पर एक वक्त दोनों का गुस्से में आ जाना मामले को बेहद खराब करता है। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई औरत खाविन के गुस्से पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसे सब्र अय्यूब का अजर अता फरमाए, सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम का। और अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र बहुत बड़ा था। तो अगर खाविन गुस्से हो जाए और बीवी गुस्से पर सब्र कर ले उसके, तो अल्लाह ताला उसको सब्र अय्यूब अता फरमाएंगे। इसी तरह कोई मर्द अपनी बीवी के गुस्से पर सब्र करे तो अल्लाह ताला उसे भी सब्र अय्यूब का दर्जा अता फरमाएंगे। तो जब सब्र का इतना अजर सवाब मिलता है तो उस मौका पर जरा खामोश हो जाया करे। इस मौका पर जरा खामोश हो जाया करे, लेकिन क्या करे, उस वक्त तो याद ही नहीं आता खामोश रहना है, फौरन निकाल देते हैं, बंदूक की गोली निकल जाती है, अशुर हो जाते हैं और जख्मी हो जाते हैं भी। अब ये है, दीन आएगा, दीन तो उस वक्त में भी इंसान को याद रहेगा कि मुझे खामोश, या फिर ये मुराकबा है, जिक्र अजकार से इंसान को उस वक्त फिर होश रहते हैं। और अगर ये दीन नहीं है और अल्लाह का ताल्लुक नहीं है तो इंसान को होश, हाँ बातें सुनी बहुत अच्छा लगा, लेकिन जहां मामला हो वहां सब भूल जाएंगे। इस बात का याद रखिए, इस बात को याद रखिए, मियां बीवी दोनों को मनफी सोच से बचना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग से बचो। आज दोनों और नफ्स का काम क्या है, शैतान का काम नेगेटिव डाल देगा, सीधा सीधी बात सोचो, उल्टा मत सोचो। तो मनफी सोच से बचना चाहिए। पंजाबी का मकोला है, भांदे वा सब कुछ भावे थे, न बांधे वा कुछ भी न भावे। यानी जो आदमी अच्छा लगता हो उसका हर काम अच्छा लगता है, जो काम अच्छा लगता हो उसका हर काम अच्छा लगता है, और जो आदमी बुरा लगता हो उसका हर काम बुरा लगता है। मियां बीवी में अगर मनफी सोच हो, नेगेटिव थिंकिंग हो, तो एक दूसरे की हर बात जहर मालूम होती है, बिल्कुल एक दूसरे की हर बात जहर मालूम होती है। हिकायत है, एक बुजुर्ग की बीवी उनसे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती, एक बुजुर्ग की बीवी हर वक्त उनसे क्या करती थी, लड़ती झगड़ती रहती थी। उन्होंने एक दिन दुआ की कि अल्लाह मेरे हाथ पर कोई ऐसी करामत जाहिर फरमा जिसे देखकर मेरी बीवी भी मान ले कि हाँ ये कोई मेरा शौहर है, कुछ अल्लाह वाला, मेरी बीवी भी मेरी अकीदत मत हो जाए, मुझे मान ले, ये मुझे मानती नहीं है। तो अल्लाह वालों ने दुआ की, चुनांचे कुदरत इलाही से उन्हें इल्हाम हुआ, अल्लाह वाले तो थे ही और बीवी झगड़ती रहती थी, उन्होंने कहा अल्लाह कुछ ऐसा तो दिखा इसके दिल में मेरी मोहब्बत आ जाए। तो उन्हें इल्हाम हुआ कि तुम उड़ना चाहो तो तुम्हें हवा में उड़ने की करामत मिलेगी, हवा में उड़ने करामत मिलेगी। चुनांचे बुजुर्ग उड़ते उड़ते उड़ना शुरू करते, उड़ते उड़ते अपने घर के ऊपर से गुजरे, उड़ते उड़ते अपने घर के ऊपर से गुजरे, जब शाम को वापस घर आए तो बीवी ने आते ही कहा, लो तुम भी बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो, बुजुर्ग तो आज मैंने देखा है। क्या क्या है कि जो हवा में उड़ते जा रहे थे, ये बुजुर्ग तो है, तुम क्या बुजुर्ग हो? तो उस बुजुर्ग ने कहा, खुदा की बंदी वो तो मैं ही तो था। तो बीवी ने फौरन कहा, अच्छा मैं भी सोच रही थी कि उड़ने वाला टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। अच्छा, वो बोले मैं भी सोच रही थी कि उड़ने वाला टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ रहा है। तो देखा उसकी नेगेटिव सोच, उसमें भी ऐप तो निकाल ही दिया। अच्छा अच्छा, इसीलिए तो ऐसा हुआ था। आज बीवी को कुछ भी तुम अच्छी बात करो, हाँ इसीलिए वो तुम्हारी ये था, तो कुछ न कुछ तो निकालेगी। ना कैसा कर, तो फरमाया उड़ने वाला टेढ़ा टेढ़ा क्यों उड़ा। देखा मनफी सोच कितनी बुरी चीज है। मियां बीवी को चाहिए कि अपने अंदर मुस्बत यानी पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच पैदा करे। मियां बीवी को चाहिए कि कदम उठाने से पहले देख ले के रास्ता किधर को जाता है। जी, जो शख्स अपनी बीवी पर एहसान करेगा, जो शख्स अपनी बीवी पर एहसान करेगा यकीनन वो अपनी बीवी का दिल जीत लेगा। यकीनन वो अपनी बीवी का दिल जीत लेगा। तो बीवी को जोर के जरिए, जोर के जरिए जीतने की कोशिश न करो, ताकत के जरिए से, जोर के जरिए से, डांट डपड़ के जरिए से जीतने की कोशिश मत करो, नहीं जीत सकते। याद रखना, जीतने की कोशिश न करे, बीवी को एहसान और अच्छे अखलाक के जरिए जीतने की कोशिश करे। जितना जोर लगाओगे तो वो और ज्यादा जोर लगाएगी, इसलिए कि ये चीज कभी भी नहीं आ सकता। जोर से, ताकत से कुछ नहीं होगा। क्या कहा, एहसान और अच्छे अखलाक से उसका दिल जीत सकते। अल्लाह को बनाया, तुम जोर लगाओगे तो वो तो और ज्यादा तुम्हारे पर गुस्से होगा। अच्छे अखलाक से उसका दिल जीत सकते हैं। इस दिवाजी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज मनफी सोच। मैरिज वाली जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली चीज नेगेटिव सोच। देखिए, सोचने के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। सोच जो है थिंकिंग, उसके मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। मैं मिसाल देता हूं, एक शाख पर फूल भी है, कांटे भी है। एक शाख समझे, ब्रांच, उसमें फूल भी है और कांटे भी है। ये थिंकिंग का एक मिसाल दे रहे हैं। ये मुखातब, तुझे गिला है कि फूल के साथ कांटे हैं, तो क्या कहेंगे? अरे यार, फूल के साथ कांटे हैं। एक आदमी देखने वाला क्या कहेगा? अरे फूल के साथ कांटे हैं, थिंकिंग देखो। और मुझे खुशी है, और दूसरा क्या कहेगा? मुझे खुशी है कि कांटों के साथ फूल है। देखा थिंकिंग, एक कह रहा है अरे फूल के साथ कांटे हैं, तो उसकी उसकी सोच देखो कांटे पर गई। और ये जो सोच रहा है अरे यार कांटे के साथ में फूल है, तो उसकी सोच फूल पर गई है। समझ में आई बात मेरी? ये सोच बताए कि आज हमारे ऐसी है कि उसके अंदर अच्छाई है, उस पर नहीं जाते, अरे तू तो ऐसी है, तो वो फूल पर नजर नहीं गई, उसकी नजर कांटे पर गई। बोले कांटे के साथ फूल है, और किसकी सोच अच्छी थी, उसने फूल को देखा, अरे बोले कांटे के बावजूद उसमें फूल है। तो ये बात समझो, तो मुझे खुशी है कि कांटों के साथ फूल भी है। ये अपनी नजर है कि किसी की नजर कांटों पर गई और किसी की नजर फूल पर गई। सच है, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। इंशाल्लाह हम भी अपनी थिंकिंग को और अपनी सोच को क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे, हमेशा अच्छी देखेंगे और हमेशा तारीफ करेंगे। जिन्होंने कुछ भी किया है उसमें नुक्स है तो भी हम उसकी अच्छा ही बयान करेंगे, तो मोहब्बतें बढ़ेगी। और आज ये कि अच्छा किया है, नुक्स एक है, 10 पॉइंट अच्छे हैं, तो उस एक पॉइंट को ही बयान करते हैं और 10 पॉइंट भूल जाते हैं। और हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि अगर 9 पॉइंट खराब है और 1 पॉइंट अच्छा है तो उसी को लेकर उसकी तारीफ करो, तो उससे जिंदगी में मोहब्बतें पैदा होती है। देखो मुस्कराना भी नेकी है, मुस्कराना भी नेकी। हदीसे पाक में है कि जब कोई बीवी अपने खाविन की तरफ देखकर मुस्कराती है और खाविन बीवी की तरफ देखकर मुस्कराता है तो अल्लाह ताला दोनों को देखकर मुस्कराते, अल्लाह ताला दोनों को देखकर मुस्कराते। अल्लाह अल्लाह, सैयद आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि नबी इस्लाम जब भी घर में दाखिल होते, अब हमारे नबी की सुन्नत देखो कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी घर में दाखिल होते तो मुस्कुराते चेहरे के साथ दाखिल होते, मुस्कुराते हंसते चेहरे के साथ दाखिल होते थे। खाविंदों को, शोहरों को चाहिए कि जब दफ्तरों में और ऑफिस में के जो झगड़े हैं ऑफिस में ही छोड़ कर आया करे, जब घर में दाखिल हो तो मुस्कुराहटे बिखरते हुए सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिलेगा और जवाब में बीवी की मुस्कुराहट भी मिलेगी, है ना। कि मुंह चढ़ा करना है, कभी कभी इंसान बाहर का गम लेकर घर में आकर करता है, पर मैं नहीं, घर में आओ तो उस वक्त बाहर की सोच भूल जाओ। स्माइल इज समथिंग नाइस टू सी, इट डस स्माइल फर्स्ट कैन। ये भी नहीं होना चाहिए कि खाविन तो मुस्कुराते चेहरे से घर आए, खाविन तो मुस्कुराते चेहरे से घर आवे मगर बीवी मुंह लटकाए फिरती रहे, वो भी नहीं होना चाहिए। काविन की मुस्कुराहट का जवाब बीवी को दर्जे जैल अल्फाज में देना चाहिए, मैयत घर न हो तेरी तो घबराऊं गुलिस्ता में, रहे तू साथ तो सहरा में गुलशन का मजा पाऊं। तो उसको भी जवाब देना चाहिए मुस्कुराहट के साथ। हाँ, तो इस तरीके से देखो ये घर की जिंदगी जो है वो ऐसी मोहब्बत के साथ गुजारोगे, ये इबादत बनेगी, याद रखना, ये बेकार नहीं है, ये इबादत है, इबादत। आज हमने नमाज पढ़ने को तो इबादत समझा है, घर में कोई चीज बर्दाश्त करने को इबादत नहीं समझ। इसलिए आज के बाद जब भी घर में जाए तो हमें समझना कि ये भी इबादत है, मुस्कुरा से मिलना, हंसते मुंह मिलना इबादत है, और उनकी अच्छाई ढूंढना ये इबादत है, गलतियों को माफ करना ये इबादत है, ये सारी इबादत है। तो ऐसी इबादतें लोग नहीं करते, पता नहीं क्यों क्यों नहीं करते, वो समझते इस पर क्या मिलने वाला है, इस पर क्या मिलने वाला है? नहीं, इस पर बहुत कुछ मिलेगा। पूरी पूरी रात तुम नमाज पढ़ोगे उस पर वो दर्जा नहीं मिलेगा, तुम मुस्कुराते चेहरे से अपनी बीवी से मिलोगे उस पर उससे ज्यादा दर्जा मिलेगा, उससे बड़ा दर्जा मिलेगा, क्योंकि उसमें मुजाहदा ज्यादा है। ऐसे औरतों को भी, वो भी नमाज की बड़ी शौकीन होती है, अरे वो शोहर को मुस्कुराते चेहरे से मिल गए तो बहुत बड़ी इबादत हो। और इंग्लिश का एक फकरा है, उसको मेरे दोस्तों याद कर लीजिए, बल्कि घर में कहीं लिखकर लटका लीजिए, लिखकर कहीं बोर्ड की तरह लगा दो। हाउस इज बिल्ट बाय हैंड बट होम इज बिल्ट बाय हार्ट। फरमाया, कहने वाले ने कहा कि मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं मगर घर हमेशा दिलों से बना करते हैं। इसको घर में लिख कर लगा दो तो क्या जब भी नजर पड़ेगी तो हमें फौरन याद आ जाएगा, अरे यार घर तो ऐसे बनता है। तो ये है कि कहने वाले ने कहा मकान तो हाथों से बन जाया करते हैं मगर घर हमेशा दिलों से बना करते हैं। ईंटें जुड़ती है, ईंटें जुड़ती है, मकान बन जाते, ईंट पर ईंट जुड़ेगी तो मकान बन जाते हैं, मगर जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाया करता है। तो दिल जुड़ते हैं तो क्या होगा, घर आबाद हो जाए। मेरे दोस्तों, हम इन बातों को तवज्जो के साथ सुने, हम इन बातों को हम इन बातों को तवज्जो के साथ सुने, इधर ध्यान दे और अच्छी इस दिवाजी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। हाउस इज बिल्ट बाय हैंड बट होम इज बिल्ट बाय हार्ट, बाय हार्ट विथ हार्ट नहीं बाय हार्ट। तो फरमाया मेरे दोस्तों हम इन बातों की तवज्जो के साथ सुने, अच्छी इस दिवाजी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातें अपने घर में समेट लिया करें, ऐसा झगड़ा न बनाए जो कम्युनिटी में टॉक ऑफ द टाउन बन जाए। और आज तो हमारा हर झगड़ा बाहर आ जाता है, टॉक ऑफ द टाउन बनाकर हम अपनी जात के हॉल से बाहर निकले, यानी हमारी अपनी असलियत बाहर आ जाए, हम मुसलमानों की बदनामी के बजाय मुसलमानों की नेक नामी का जरिया बने। जी तो फरमाया नेक नामी का जरिया, आज ऐसी सोच रखने वाले, ऐसी सोच रखने वाले इतने थोड़े हैं, इतने थोड़े हैं कि चिराग लेकर अगर ढूंढे ना लाइट लेकर तो बहुत कम मिलेंगे, सही है कि नहीं? इस टाइप की थिंकिंग और सोच रखने वाले आज तो हम हर जगह पर कांटे ही कांटे देखते हैं यार, ये तो कांटे ही कांटे है, हालांकि उसमें फूल जरूर होता है, गुलाब हमेशा कहां मिलेगा आपको? कांटों के साथ ही मिलेगा। तो मालूम हुआ कि कांटों के अंदर फूल होते हैं, लेकिन हमारी नजर कांटों पर ही रहती, फूल पर जाती ही नहीं है, समझे? जहां किसी में ऐब है तो वहां अच्छाइयां जरूर होगी। क्या मतलब? ये हुआ, जहां कांटे हैं तो वहां फूल जरूर है, क्योंकि फूल हमेशा कांटों के अंदर रहती है। उसका मतलब है कि जिस इंसान के अंदर ऐब है तो वहां अच्छाइयां भी है, खाली ऐब नहीं होते हैं, लेकिन हमारी नजर वो ऐब ही ऐब देखती है, वो फूल को देखा ही नहीं। किसी इंसान में जाओ या किसी बीवी में देखो तो उसमें भी कांटे भी होंगे फूल भी होंगे। अब हम सोचे कि कांटे ही न रहे फूल रहे तो दुनिया में कोई भी गुलाब आपको मिलेगा ऐसा? अरे दिखा दो। जब ये नहीं मिल सकता है तो ये भी नहीं मिलेगा कि भाई मैं तो बीवी ऐसी लाऊंगा जिसके अंदर एक भी कांटा ना हो, तो भाई भूल जाओ, भूल जाओ कि ऐसी बीवी लेकर आऊंगा, दुनिया में नहीं मिल सकती। फरमाया कांटों के साथ फूल जरूर होगा, तो क्या करना? कांटों से बचो और फूल को तोड़ो। अगर तुम नहीं बचोगे तो कांटे पकड़ लेंगे तो छुप जाएंगे। तो क्या है, उस फूल से फायदा हासिल कर लो, उसकी खुशबू सूंघ लो, उसको अपने लिए पसंद कर लो, लेकिन तुम कहो कांटा अंदर नहीं हो सकता। इसलिए याद रखना आज के बाद ये भूल जाओ कि मेरी बीवी में कोई ऐब ना हो, बल्कि देखो कि नहीं इसके अंदर फूल है। और बीवियां भी अपने शौहर के अंदर ये चीज देखे। एक हुजूम औलाद आदम का जिधर भी देखे, ढूंढिए तो फिर हर तरफ के बंदों का काल। आमतौर पर देखा गया कि जब मियां बीवी करीब होते हैं तो एक दूसरे से लड़ाइयां होती है, जब करीब होते हैं तो एक दूसरे से लड़ाइयां होती है। अगर इसी हालत में खाविंद फौत हो जाए तो यही बीवी सारी जिंदगी खाविंद को याद करके रोएगी। करीब में थे तो रोती थी, इस वजह से खाविंद ऐसा वैसा तैसा, और जब वो चला गया तो अब भी रो रही है, अब के तो वो तो बहुत अच्छा था, मेरा ये था, अब तारीफ कर। तो उस वक्त का रोना क्या फायदा, पहले भी रो रही थी, मरो कैसा मिला है, और जब चला गया तो कहता है कितना अच्छा था। तो ये होता है कि जब जिंदगी करीब होते हैं तो याद नहीं करते, कांटे ही कांटे नजर आते, और अब फूल नजर आया, मरने के बाद वो फूल नजर आता, अरे मैं तो भूल गए तो फूल। जी तो फरमाया उसी हालत में खाविंद हुआ तो बीवी सारी जिंदगी खाविंद को याद करके रोती रहेगी कि जी इतना अच्छा था, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। अगर बीवी फौत हो जाए तो यही खाविंद सारी जिंदगी याद करके रोता रहेगा कि बीवी इतनी अच्छी थी, मेरा कितना ख्याल रखती थी। तो पंजाबी की कहावत है कि बंदे दी कदर आंधी के ये कर गया या मर गया, हम बंदे की कदर उसके करीब रहते हुए कर लिया करें, जिंदगी में कर ले। कई मर्तबे देखा गया कि मियां बीवी झगड़े में एक दूसरे को तलाक दे देते, जब होश आती है जब होश आती है तो खाविंद अपनी जगह पागल बना फिरता है, तलाक तो दे दिया, जब होश आया तो अब पागल है, बीवी अपनी जगह पागल बनी फिरती है। फिर हमारे पास आते हैं मौलवियों के पास कि मौलवी साहब को ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि फिर हम मियां बीवी बनकर रह सके, गुस्से में तो आपस में तो कर लिया जो करना था, और अब आते मौलवियों के पास, तो ऐसी सूरत हाल हरगिज नहीं आने देनी चाहिए। अफ दरगुजर और इफाम और तफहीम से काम लेना चाहिए, बल्कि एक रूठे तो दूसरे को मनाना चाहिए, एक रूठ जाए तो दूसरे को मनाना चाहिए। किसी शायर ने कहा है, इतने अच्छे मौसम में रूठना नहीं अच्छा, हार जीत की बातें कल पे हम उठा रखे, कल पे हम उठा रखे, आज दोस्ती कर ले। कौन हारा कौन है छोड़ो बोले तो कल, आज हम दोस्ती कर लो। जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बत के लिए, जिंदगी यूं ही बहुत कम है मोहब्बतों के लिए, रूठ कर वक्त गंवाने की जरूरत क्या है। मोहब्बत के लिए वक्त वैसे ही कम पड़ रहा है और तुम आपस में रूठ के क्यों वक्तों को जाया कर दो। ठीक है, अब यहां तक ही रखते हैं। अल्लाह नहीं, ये भी पूरा कर लेते, एक पेज बाकी है। मौजूद सामीन, इस दिवाजी जिंदगी के बारे में हमारा मशरकी माशरा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरसुकून, एक वेस्टर्न लाइफ है और एक ईस्टर्न लाइफ। बाज मशरक की लड़कियां, मशरक यानी ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट वही है ना, मगरिब, तो मशरक की लड़कियां तो इस कदर पाकदामन होती है कि उनमें हूरों की सिफात झलकती है, यानी खाविंदों की आशिक, गैर मर्दों की तरफ माइल न होने वाली, इस्लाम की बरकत है कि मशरक में आज भी बाद ऐसी मासूम जवानियां होती है जो अपने घर से कदम निकालती है तो उनके दिलों में किसी गैर मर्द का दखल नहीं हुआ करता। वेस्टर्न लाइफ में ये चीज नहीं मिलेगी। कई ऐसी भी होती है कि खाविंद का साया सर से उठ गया, बच्चों की खातिर अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। जिस औरत का खाविंद फौत हो जाए उसकी तो वहां खजा में तब्दील हो गई, मगर एक खजा के मौसम में भी अपने परों के नीचे अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छुपाकर जिंदगी गुजार रही होती। अब शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं? हमारा तजुर्बा है कि हमारे इस मुसलमानों के माहौल में 99% मुसलमान बच्चियां शादी के वक्त जब रुख्सत होती है उनके दिल की नीयत होती है कि मैंने आज जाकर अपना घर बसाना है। 99% बच्चियां घर बसाने की नीयत से रुख्सत होती है। आगे खाविंद पर मुनहसिर है कि अगर उसने सही इस्तकबाल किया, बर्ताव किया तो घर आबाद हो जाएगा, अगर उसने गलत बर्ताव किया घर बर्बाद हो जाएगा। तो घर की बुनियाद ये खाविंद पर मुनहसिर है कि वो किस तरह बीवी को डीलिंग करता है, रखता है। बीवी तो आती ही है उसी नीयत के साथ कि मैंने तो अपना घर बसाना है। आखिरकार उसने माँ को क्यों छोड़ा, बाप को क्यों छोड़ा, बहन भाई को क्यों छोड़ा, अपने वतन को क्यों छोड़ा, अपने घर को क्यों छोड़ा? सब कुछ इसलिए कि एक बंदे की खातिर में जाऊंगी तो उसका घर बसाऊंगी। जो बच्ची इतनी कुर्बानियां दे सकती है वो उससे ज्यादा भी कुर्बान कर सकती है, मगर उसको खाविंद से मोहब्बत मिलनी चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, अच्छे अखलाक मिलने चाहिए, तो उससे मालूम हुआ कि खाविंद का बर्ताव अच्छा हो घर अच्छा बन जाता है, खाविंद का बर्ताव बुरा हो घर बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसी ने अजीब बात कही है, जब ईंटें जुड़ती है तो मकान बन जाया करते हैं, लेकिन जब दिल जुड़ते हैं तो घर आबाद हो जाया करते हैं। तो खाविंद को चाहिए कि बीवी को जो घर लेकर आया अब दिल को जोड़े और अपने घर को आबाद करे। देखिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से कैसी रहमत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खुशगवार इज़दिवाजी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये सारी थी इज़दिवाजी जिंदगी के बारे में। इंशाल्लाह बात आती जाएगी। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक सल्लम। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ। رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ। صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ।